ओम शांति, ओम शांति। हम सभी के बीच में राजयोगिनी बहन ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ से हार्दिक स्वागत करते हैं। उषा बहन जी को आप सभी जानते ही हैं। बहन जी, ये सभी 10 साल से ऊपर से जो ज्ञान में चलते उन सभी को बाबा की भक्ति करने का चांस मिला है, तो आप जानते ही हैं उषा बहन जी को कि हमारी एक बहुत सीनियर राजयोगा टीचर भी है। नई नई इन्वेंशन करना ज्ञान में, उसके लिए आप बहुत बहुत सेल्फ स्टडी और पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए हमारा जो विशेष सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स है वो भी आपने ही उसका इन्वेंशन किया हुआ है। उसकी बुक भी है जो आप सबने पढ़ी होंगी। साथ साथ अभी जो विशेष चल रहा है वो गीता का भगवान, उसके ऊपर भी आपने अच्छी स्टडी की है और बहुत अच्छा अभी उसका रिजल्ट आ रहा है। और साथ साथ चाहे राजयोग शिविर हो या भट्टी हो या कॉन्फ्रेंस हो, आप हर प्रकार से बाबा की सेवा में उपस्थित एक विशेष फैकल्टी है तीनों जगह के लिए, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांतिवन। तो अभी आज आए ही थे ज्ञान सरोवर में, है ना, सुबह में आपका क्लास था और फिर अभी क्लास है और उसके बाद भी पीस पार्क के अंदर भट्टी चल रही है, वहां पर भी आपका क्लास है। तो इसलिए अभी विशेष क्लास है आपका, विषय आप सबको दिया हुआ है निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति। तो आप सभी उसी लगन से, उसी ध्यान से सब बातें सुनेंगे तो जरूर आत्मा के अंदर सीधा उतर जाएगा, जैसे गले में हलवा उतर जाता है ना, गरम गरम हलवा उतरता है ना, ऐसे उतर जाएगा। तो फिर से उषा बहन जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ओम शांति,
ओम शांति। बाबा का हर एक बच्चा वरदानी आत्मा है। किसी को बाबा से कौन सा वरदान मिला, किसी को कौन सा वरदान मिला। आज का आपकी भट्टी का विषय है निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति। ये शब्द जैसे ही याद आते हैं तो बाबा की संपूर्ण अवस्था याद आ जाती है कि बाबा के जीवन के अंतिम ये तीन महावाक्य, और इसी को ही शायद संपूर्ण अवस्था कहेंगे कि ये तीन स्थिति जिसने भी प्राप्त कर ली वो संपूर्ण बन गया। जो भी अपने दादियां भी संपूर्णता को प्राप्त करके यहां से गई, उनके जीवन की भी यही तीन स्थिति। परंतु जैसे आज बाबा ने सुबह के मुरली में जो महावाक्य उच्चारण किए, उन महावाक्य को जब सुनते हैं तो बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि धर्म और कर्म ये दो क्या है, धर्म और कर्म ये दोनों क्या है। हाँ, धर्म और कर्म ये जैसे एक झूले के दो रस्सियां हैं और ये दोनों रस्सियां बराबर होनी चाहिए, तब झूलने का आनंद ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार निराकारी अवस्था जो है ये वास्तव में हमारा जो फाइनल स्वरूप है उसके लिए निरहंकारी और निर्विकारी। निरहंकारी बनना ये हमारे जीवन की धारणा कहेंगे या कर्म कहेंगे, हाँ, निरअहंकारी बनना ये हमारा कर्म है और निर्विकारी बनना ये हमारी धारणा है। जैसे आज बाबा ने कहा पवित्रता ये हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ धारणा है और इसलिए निर्विकारी बनना ये धारणा है, तो निरहंकारी कर्म में, क्योंकि देह अभिमान विशेष कहाँ आ जाता है, कर्म में ही देह अभिमान आ जाता है। कोई भी कर्म हम करते हैं और उस कर्म में थोड़ी भी अगर वाह वाह हो जाती है तो स्वाभाविक है कि एक नशा जीवन में चढ़ना स्वाभाविक हो जाता है और यही कहीं न कहीं देह अभिमान या धीरे धीरे अहंकार को प्रैक्टिकल स्वरूप में इमर्ज करता है। जब बाबा ने कहा कि जैसे माया का तो ये काम ही है, बार बार कोई ना कोई संस्कार के वश क्या करती है, कर्म कराती जाती है, कोई एक भी कमजोरी का संस्कार आ गया तो वो बार बार गिराता रहता है, गिराता रहता है। ऐसे ही अहंकार भी ऐसा है जो उस निराकारी अवस्था तक पहुंचने में कई बार चढ़ते हैं और थोड़ा अहंकार आया तो फिर गिर गए, गिराता ही जाता है, बार बार गिराता ही जाता है। इसीलिए जब तक ये कर्म में ये भाव नहीं आ जाता कि करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, करणहार हूं, बाबा का कार्य है, बाबा की दी हुई विशेषता है, तो मुझे उसका अहंकार किस लिए आए, ये धारणा ही हमारे अंदर निमित्त भाव को जागृत करता है। जिस तरह बड़ी दादी जी को जब हम देखते हैं तो दादी जी के मुख से जीवन के अंदर कभी भी मैं शब्द नहीं निकला, ये उनकी सबसे बड़ी जीवन की धारणा थी कर्म में कि मैंपन नहीं आया उसमें। कभी भी दादी जी को अपना विचार भी देना होता था तो दादी हमेशा यही कहती थी कि दादी का ये विचार है। भावार्थ ये कि वो हमेशा उस पोस्ट को भी रिगार्ड रिस्पेक्ट देती थी कि बाबा की दी हुई पोस्ट है और इसीलिए हमेशा ये बात कहती थी कि दादी का विचार है। मना जिस स्थान के ऊपर बाबा ने दादी जी को रखा था उस स्वमान में स्थित होकर के वो अपनी राय देती थी, मेरा ये विचार है, मैं ये चाहती हूं। अथॉरिटी होने के बावजूद भी अथॉरिटी को यूज नहीं करना है ना, ये निरहंकारीपन। और इसीलिए दादी जी के स्लोगन में हर जगह हम यही पाते हैं निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। निर्मल वाणी तभी आती है जब हमारे अंदर ये निमित भाव और निर्माणता है। तो ये साक्षात हम लोग ने देखा है ना। कई बार कई लोग कहते बाबा मम्मा को तो हम नहीं देख पाए। चलो बाबा मम्मा को नहीं देखा, दादी जी को तो देखा। और दादी जी के अंदर से हमेशा ये भाव जब निकलता रहा तो ये जैसे साक्षात बाबा मम्मा के संग में रह करके जो पालना उन्होंने ली थी वो उनके प्रैक्टिकल जीवन में थी। तो ये हमें भी प्रेरणा यही देती है कि हर कर्म करते समय हमारे अंदर से भी क्या निकलना चाहिए। करण करावन हार बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, बाबा ही विशेषता भरता है, बाबा से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो हर जगह जब बाबा बाबा रहेगा तो वो मैंपन सहज समाप्त हो जाएगा। तो कर्म में निरहंकारीपन को लाने के लिए निमित्त भाव बहुत पावरफुल रीति से हमारे जीवन के अंदर चाहिए। बाबा के जीवन में भी यही बात सुनते हैं कि बाबा हमेशा इस स्मृति में रहते थे कि कराने वाला तो शिव बाबा है, मैं तो निमित्त हूं, बाबा का ये रथ है, बाबा करा रहा है ना? तो हर वक्त बाबा के अंदर भी ये बात चलती रही। तो गीता में भी मुख्य पाठ कौन सा पढ़ाया? हम सभी जानते हैं कि भक्ति मार्ग की गीता में भी यही बात स्पष्ट सामने आती है कि अर्जुन तुम निमित्त हो, तुम निमित्त हो, तुम्हें तुम कुछ नहीं कर रहा है ना, तुम किसी को नहीं मार रहा है। तो इसी तरह चाहे भक्ति मार्ग में देखा जाए तो भी ये निमित्त भाव की बात आती है। तो ज्ञान मार्ग में भी ब्रह्मा बाबा के जीवन में सबसे बड़ी यही धारणा रही और उनको देखते हुए बड़ी दादी जी के अंदर भी यही भाव रहा कि मैं तो निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है ना। तो कर्म में ये अवस्था प्रैक्टिकल जितनी हमारी बढ़ती जाएंगी उतना ही निर्विकारी, क्योंकि अहंकार एक विकार है इसलिए उसको सेपरेट किया गया है, नहीं तो निर्विकारी में निरहंकारी समाई हुई है। क्योंकि धारणा में, धारणा के आधार पर कर्म समाया हुआ है, ये दोनों का गहरा संबंध है आपस में। तो इसलिए निर्विकारी बनना ये हमारी धारणा है और निर्विकारी तभी बन सकते हैं जब हम आत्मा के निज धर्म में अपने आप को स्थित करते हैं। आत्मा का निज धर्म कौन सा है? सातों गुण है ना। इसीलिए प्रतिदिन बाबा की साकार मुरली भी जब सुनते हैं तो बाबा एक बात हमें बार बार इशारे के रूप में देता है कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। फिर बाबा कई बार कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है कि अलग है? हाँ, देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है या अलग है? एक ही है हा? क्या कहेंगे? दो चीज है, अलग अलग है। तो देही अभिमानी कब बनेंगे, आत्म अभिमानी कब बनेंगे? कर्म में देही अभिमानी और आत्म अभिमानी योग के समय है ना, योग के समय। ये दो बातें हमेशा आप कभी भी साकार मुरली को ध्यान से अगर सुनेंगे तो बाबा जब भी देही अभिमानी शब्द का प्रयोग करते हैं तब इंद्रियोत्तरवक कर्म करने समय देही अभिमानी का शब्द का प्रयोग हुआ है, और आत्म अभिमानी तभी प्रयोग हुआ है कि जब कर्म से फ्री हो जाए हम, ये इंद्रियां समेट करके योग में जब बैठते हैं उस समय आत्म अभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है। क्योंकि एक है देह अभिमान, एक है देही अभिमानी। कोई व्यक्ति देह अभिमान में है कैसे पता चलता है? हाँ, किसी के लिए भी कभी भी कोई कमेंट दे देता है कि ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है, कैसे पता चला आपको कि देह अभिमानी है? हाँ, कर्म करते समय मैं का भाव आया और वन बाय वन बोलते जाओ। पांच विकार खाली नहीं, जो सूक्ष्म उसकी जो सेना है, पांच विकारों की जो सूक्ष्म सेना है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय कोई भी स्वार्थ कोई भी उसके जो सूक्ष्म अंश है, जब उसको वशीभूत होकर के व्यक्ति कर्म या व्यवहार में आता है तब कहेंगे कि यह व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है ना। तो आत्म अभिमानी मतलब या देही अभिमानी मतलब, पहले देही अभिमानी मतलब हाँ? अच्छा, आत्म अभिमानी मतलब क्या? आत्म अभिमानी मतलब आत्मा के सात गुण से नहीं, आत्म अभिमानी मतलब आत्मा के सातों गुणों में मन को स्थिर खाली नहीं करना है लेकिन उसका स्वरूप बनना। जब उसका स्वरूप बनते हैं, जैसे कहा देह अभिमान का मतलब है कि जब व्यक्ति कोई न कोई विकार के अंश के भी वंश के स्वरूप में बन आ जाते हैं तो उसको देह अभिमान कहते हैं। तो आत्म अभिमानी उसको कहा जाता है कि जब हम कर्मेंद्रिय को समेट कर योग में बैठते हैं तो उस वक्त आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप, कोई एक गुण का नहीं, सातों गुणों का स्वरूप बनना, और उस समय जैसे जैसे हम स्वरूप बनते जाते हैं तो वो ऊर्जा, सातों गुणों की ऊर्जा वाइब्रेशन के रूप में हमारे चारों ओर एक प्रभा मंडल के तरह से तैयार करता है, हमारे आसपास एक प्रभा मंडल को तैयार करता है जिसके आधार पर व्यक्ति की वो स्थिति कितनी बनी है उसको देख पाते हैं। जैसे बाबा की शुरू की मुरलियां जब अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं तो उन मुरलियों में बाबा ने कई बार ये बात कही है कि बच्चे आगे चल करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे कि लोग देखेंगे, टेस्ट करेंगे आपके ऊपर कि आपकी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति कितनी है। तो आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर भी ऐसे कैमरास आए कि जिस कैमरा से वो फोटो निकालते हैं और आपके ओरा चारों ओर वो ओरा को देख सकते हैं। तो उसमें जो डार्क कलर्स के ओरा होते हैं तो कहते हैं ये ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पर है, और जितना लाइट कलर का ओरा होता है उतना सोल कॉन्शियसनेस की ओर हम आगे बढ़े हैं, ये स्पष्ट है। तो विज्ञान भी आज उस बात को कहता है। मुझे याद आता है कि अभी कुछ समय पहले, पिछले साल, एक बहन मेरे पास आई थी, तो उसको कहीं तकलीफ थी शरीर में, पेट की तकलीफ थी या पता नहीं कहाँ की तकलीफ थी, तो उसने काफी दवाइयां किया, ठीक नहीं हो रही थी। बेंगलोर से आई थी, तो वो वहां पर ये ओरा स्कैनिंग जो करते हैं, उन डॉक्टर, आजकल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास भी ये ओरा स्कैनिंग होता है, तो उस ओरा स्कैनिंग वाले के पास गई। ये सत्य घटना मैं बता रही हूं आपको। उसने अपना ओरा स्कैनिंग कराया और जब सारा ओरा स्कैनिंग हुआ तो पेट के पास में जो उसके ओरा का कलर आया, क्योंकि उसने सारे चित्र मुझे दिखाए, इसलिए मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि किस तरह से ये ओरा इफेक्ट करता है। तो ओरा के चित्र जो उसने मुझे दिखाए, तो पेट के पास के जो ओरा है वो डार्क कलर के थे। तो उस डॉक्टर ने उसको बताया कि ये कलर का ओरा जो है ये बताता है कि तेरे नेचर में जेलसी है, ईर्ष्या है। माना, देखो ज्ञान किस तरह से अप्लाई होने लगा कि अब दवाइयां नहीं दे रहे हैं। उसको कहा तुम अपना नेचर क्योर करो। आज जो बाबा ने मुरली में कहा कि कहीं कहते मेरा नेचर ही ऐसा है, तो उसको बताया कि ये कलर का ओरा जो है ये बताता है कि तेरे अंदर ईर्ष्या है और इसलिए ये ईर्ष्या के कारण उसने अटैक किया है कि तेरे जो वीक ऑर्गन है शरीर का, पेट की सिस्टम नाजुक है, तो उसके ऊपर अटैक किया है और उसके ऊपर अटैक करने के कारण तुम्हें ये पेट की बीमारियां डेवलप हुई। और अगर अभी भी तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगी, यानी अपना नेचर क्योर नहीं करेगी, तो ये धीरे धीरे कैंसर तक भी तुमको ले जा सकती है। इसीलिए ये नेचर को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। वो डॉक्टर उसको सलाह दे रहा है, एक बीके को, बाहर वाला डॉक्टर उसको सलाह दे रहा है कि भले तुम इतने सालों से मेडिटेशन कर रही हो, लेकिन तुम्हें अपना ये नेचर चेंज करना होगा अगर तुम्हें हेल्दी होना है तो। वो अपने परिवार वालों से छुट्टी लेकर के एक महीने सेवा में आई यहाँ पर ज्ञान सरोवर में, और ज्ञान सरोवर में जितना समय सेवा करे उतना समय, उसके बाद बाबा के कमरे में जाकर के बैठ करके उसको वो डॉक्टर ने सिखाया था कि भाई ईर्ष्या को खत्म करने के लिए तुम सबके प्रति शुभ भावना के वाइब्रेशंस, उसका ऑपोजिट शुभ भावना है, तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, तुम अपने आप के प्रति भी शुभ भावना, और खास करके पेट के स्थान के ऊपर उसको फोकस करो। उसने एक महीने तक अमृत वेला 2:30 बजे उठ करके अपने नेचर को ठीक करने के लिए कि मेरा स्वरूप हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भावना रखने वाला, और मैं जो है इस संस्कार से अपने आप को मुक्त पा रही हूँ, इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स से उसने अपने आप में योग किया। और एक महीने के बाद जाकर के पुनः वो डॉक्टर के पास गई, ओरा स्कैनिंग कराया। डॉक्टर इतना आश्चर्य खाने लगा कि एक महीने में तुमने कैसे ठीक किया, कौन सा मेडिटेशन किया कि इतना फास्ट रिजल्ट तुझे मिला कि तुमने अपने नेचर को चेंज कर दिया। नेचर बता रहा है, वो चित्र बता रहा है कि तुमने नेचर को ठीक कर दिया, तो इतना फास्ट कौन सा मेडिटेशन था कि जिससे तुमने अपने संस्कार को बदल दिया। तो बाबा जो कहते हैं कि अंतिम समय के पेपरों में निराकारी स्थिति हम बनाना चाहते हैं, निर्विकारी स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी ही कमजोरी का संस्कार क्या करेगा, मुझे खींच करके नीचे ले आएगा, बार बार गिराता रहेगा। और उस समय फिर हम ये भी नहीं कह सकते क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है, क्योंकि वो नेचर मुझे परेशान करेगा, कोई ना कोई फिजिकल बीमारी क्रिएट करेगा कि जो भोगना का रूप ले लेगा, और फिर जो हम अवस्था बनाना चाहते हैं अपने वो कैसे बना सकेंगे। इसलिए अंतिम समय के लिए ऐसे साइंस के साधन निकल रहे हैं जो बताते हैं कि हमारी वास्तविक स्टेज क्या है, ये सत्य घटना। उसके बाद उस बहन ने मुझे फोन करके बताया कि दीदी मेरा ठीक हो गया है ना, एक महीने की मेरी तपस्या फलीभूत हो गई, और जैसे मैंने अपने नेचर को, उस संस्कार को सदा के लिए जीत लिया। कितनी बड़ी बात है कि एक महीने में उसने अपने नेचर को ठीक किया, पता चला तो। लेकिन बाबा ने हमें जो समझ दी है कि हर आत्मा, कोई दूसरा मुझे कहे कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, हम अपने आप को तो जानते ही है ना, मैं कौन हूं। आज क्या कहा बाबा ने, मैं कौन हूं, तो हम जानते हैं कि हम श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन मेरी कमजोरी कहाँ है वो भी मुझे पता है कि नहीं पता है। पता है ना, हर एक को अपनी कमजोरी पता है कि मेरी कमजोरी कहाँ है, जानते हैं नहीं जानते हैं, हर एक जानता है। लेकिन अभी उसको क्या कर रहे हैं, हम दनलोक के तकिए लगा करके चला रहे हैं। दनलब के तकिए कौन से हैं, ठीक हो जाएगा, अभी कौन संपूर्ण बना है, अंत तक ठीक कर देंगे हम अपने आप को, योग तो लगा ही रहे हैं ना, ये दनलब के तकिए हैं। यानी उस संस्कार को हम क्या कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उस संस्कार को हम सांत्वना दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो मेरे जीवन में, मेरे स्वभाव में तुम अपना स्थान बना के रख सकते हो, मतलब तो यही हुआ ना। और वो कितना अटैक करता है, तो आत्म अभिमानी बनने का मतलब है कि सातों गुणों का स्वरूप इस तरह इमर्ज करना कि हमारा जो ओरा है वो प्रकंपन है, जो सातों गुणों के वो ऊर्जा जो है वो फिजिकल पर्सनालिटी से भी बाहर आ जाए, और बाहर आकर के वो हमारा प्रभा मंडल के रूप में हमारे आसपास तैयार करे। जैसे देवी देवताओं को लाइट का ताज दिखाते हैं, या सारा शरीर के आसपास वो लाइट का ओरा दिखाते हैं, तो वो स्वरूप मुझे अभी तैयार करना है, जिसको कहा निर्विकारी स्वरूप, निर्विकारी स्वरूप। तो ये जितना प्रभा मंडल हमारा बड़ा होगा, एक्सटेंडेड रूप में होगा, वो आत्म स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति है, वो आत्म अभिमानी स्थिति है। और देही अभिमानी का मतलब क्या, देही अभिमानी का मतलब है कि कर्म करते समय जब हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करते समय जो आत्म अभिमानी स्थिति में बैठ करके जो हमने अपना स्वरूप तैयार किया सातों गुणों का, उसके बाद जब हम कर्म में आए, व्यवहार में आए, तो वो सातों गुणों की ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए अपने आप, हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, हर एक के साथ में वो प्रवाहित होनी चाहिए। लेकिन वो परीक्षाएं भी मेरे मन की स्थिति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेंगी, इतना ये स्थिति हमारी पावरफुल हो जाएगी। कर्म भी कर सकेंगे, कर्म करते भी एकदम लाइट, हल्कापन, वो कर्म हमें भारी नहीं करेगा। वो कर्म करते समय किसी के साथ हमारे स्वभाव संस्कार की टक्कर नहीं होंगी, क्योंकि हम सातों गुणों में स्थित हो, तो कोई अगर टकराना चाहे तो भी क्या होगा, वो लाइट जो है उसको वापस ये कर देगी, वो हमारी स्थिति को इफेक्ट नहीं करेगी, ये हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो जाएंगी अंदर से कि अगर कोई टकराना चाहे तो वो वहां आते ही उसका जैसे दम टूट जाता है, सहजता से उसका दम टूट जाता है, वो संस्कार का वो टकरा नहीं सकते हैं। पहली बात तो टकराने की हिम्मत ही नहीं करेगा, और फिर भी अगर अपने नेगेटिविटी के कारण बहुत पावरफुल हो, टकराना भी चाहे तो भी वापस जैसे चली जाएंगी। और हम इस ओरा के अंदर, ये ओरा हमारे लिए कवच बन जाएगा, जिस कवच के अंदर हमारी स्थिति सुरक्षित रहे। निराकारी स्थिति बनाना फिर आसान हो जाएगा, उस स्थिति में रहना आसान हो जाएगा। तो ये तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, निरहंकारी, निर्विकारी और निराकारी स्थिति, तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और इसीलिए बाबा ने भी प्रैक्टिकल यज्ञ के अंदर रहते हुए ये तीनों स्थिति को बच्चों के सामने प्रकट किया अपने कर्म से, कि कहीं भी कोई भी कार्य करना हो तो बाबा मम्मा पहले बैठ जाते थे। हम सभी ने यज्ञ हिस्ट्री सुनी है कि निरहंकारीपन इतना कि मैं भगवान का रथ हूं, ये अहंकार नहीं। अनाज चुनना हो तो भी बाबा बैठ जाते थे अनाज चुनने के लिए। निरहंकारीपन कर्म में, इतना निरहंकारी स्वरूप है ना। और जहां नहीं तो अहंकार आया तो क्या हो जाता है। बहुत अच्छी एक बात, अभी हम दिल्ली गए थे तो कमलमणि दादी से बैठे थे, दादी बहुत पुराने हैं उसे बाबा के समय के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि थोड़ा सा भी अभिमान कैसे हमें बाबा का हाथ छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। अहंकार ऐसी चीज है ना, इसीलिए उसको सेपरेट किया गया और विकारों से। तो बताया कि यज्ञ के अंदर मम्मा को जिसने ज्ञान सुनाया था, कई बार बाबा मुरली में ये बात कहते हैं कि मम्मा को ज्ञान सुनाने वाले भी आज नहीं है, है ना। तो मम्मा को जिसने ज्ञान सुनाया था उस दादी का नाम था, मालूम है किसी को, उस दादी का नाम था पुष्पमणि दादी, पुष्पमणि। और पुष्पमणि दादी जो थी, मम्मा को खाली ज्ञान सुनाया इतना नहीं, लेकिन उसका यज्ञ के अंदर बहुत श्रेष्ठ पाठ था, बहुत श्रेष्ठ पाठ। क्यों श्रेष्ठ पाठ? आप लोग ने सुनी होंगी कि पहले के समय में पीयू की मुरली चलती थी। सुनिए, पीयू की मुरली है। पीयू की मुरली ऐसी होती थी कि जैसे अभी अव्यक्त बाप दादा हम सभी के सामने आते हैं, लेकिन उस समय ऑलमाइटी बाबा कहते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो नीचे ही थे, तो ऑलमाइटी बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में तो आते ही थे और ज्ञान के रहस्य खोलते थे, लेकिन कभी कभी बाबा को भी जब कुछ पूछना होता था तो उस समय ऑलमाइटी बाबा पुष्पमणि दादी के तन में प्रवेश करते थे, और वो कभी भी आ जाते थे, आधी रात को 12 बजे भी आ जाते, कोई प्रोग्राम नहीं होता था। जैसे अभी अव्यक्त बाबा का प्रोग्राम जाता है सब सेंटरों पर, उस समय कोई प्रोग्राम से नहीं आता था शिव बाबा, ऑलमाइटी बाबा। और ऑलमाइटी बाबा जो है कभी भी रात को 12 बजे भी पुष्पमणि दादी के तन में प्रवेश करते थे, और उसी समय मम्मा को या ब्रिजेंद्रा दादी को, दोनों में से किसी एक को उठाते थे और उठा करके मुरली चालू कर देते थे, और वो मुरली पूरी रात वो लिखते थे, एक ही या ब्रिजेंद्रा दादी या मम्मा, सारी रात बैठ करके लिखते थे मुरली, और फिर सुबह में वो मुरली बाबा को देते थे। बाबा पढ़ करके, जैसे कहते हैं ना हलवा तैयार करते थे बाबा गरम गरम, तो इस तरह से बाबा मनन चिंतन करके उसको तैयार करके फिर वो बच्चों को सुनाते थे। तो वो पीयू कभी भी आ जाता था। पुष्पमणि दादी का ये रोल था, ऑलमाइटी बाबा की प्रवेशता उनके अंदर होती थी। परंतु वो यज्ञ छोड़ करके चली गई। क्यों? आश्चर्य लगेगा, इतना ऊंचा पाठ जिसका, मम्मा को जिसने ज्ञान दिया। तो जब यहाँ यज्ञ के अंदर आए तो उस समय जो है, जब भी बाबा कहीं बाहर जाते थे, साकार बाबा, और बाहर से आते थे तो यहाँ आंगन में, पांडव भवन के आंगन में पांच दादियां खड़ी हो जाती थी बाबा के वेलकम के लिए। एक मनमोहिनी दीदी होती थी, मम्मा होती थी, ब्रजेंद्रा दादी होती थी, पुष्पमणि दादी होती थी और ईशु दादी, ये पांच दादियां खड़ी हो जाती थी बाबा के वेलकम के लिए। तो एक दिन बाबा कहीं बाहर से आए और जो है सारी दादियां खड़ी रही, लेकिन पुष्पमणि दादी नहीं आई। तो जैसे ही बाबा ने देखा तो बाबा ने पूछा कि पुष्पमणि दादी नहीं आई, पुष्पमणि दादी नहीं है? तो उस समय जो है मम्मा ने कहा मैं अभी बुलाती हूं। तो मम्मा ने किसी बहन को कह दिया कि जाओ पुष्पमणि दादी को कहो बाबा याद कर रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। तो पुष्पमणि दादी को जैसे मैसेज मिला तो दादी ने कहा ठीक है आऊंगी, आती, लेकिन आई नहीं। बाबा आंगन से ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे, और जैसे ऑफिस में बैठे बाबा समाचार सुनाते थे जहां से होकर के आए होते थे। तो बाबा ने जब बैठे पानी आदि पिया फिर पूछा पुष्पमणि दादी नहीं आई, पुष्पमणि नहीं आई? तो ब्रिजेंद्र दादी ने कहा कि अच्छा बाबा मैं बुला के आती हूं। तो बाबा ने कहा ठहरो ठहरो कर, सभी मोबाइल अगर स्विच ऑफ रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भट्टी में वैसे भी बैठे हैं आप सभी, अच्छा रहेगा। तो उस समय जो है बाबा ने कहा कि मैं खुद जाता हूं। तो बाबा ऑफिस से उठे, पांचों चारों दादियों के साथ बाबा पुष्पमणि दादी के कमरे में गए। तो पुष्पमणि दादी खटिया पर बैठे थे, बाबा जाके खड़े हो गए। तो बाबा ने पूछा आपको संदेश मिला? तो कहा मिला। तो कहा आप आए नहीं? तो उसने कहा कि मम्मा ने किसी बहन को भेजा, क्यों मम्मा खुद नहीं आ सकती थी? अहंकार सूक्ष्म में देखो कि मम्मा को मैंने कोर्स कराया, मैंने ज्ञान सुनाया, तो मम्मा की जो पोस्ट दिया था, हर एक की अपनी अपनी पोस्ट थी यज्ञ के अंदर, तो मम्मा की विशेषता के कारण मम्मा मम्मा बनी। लेकिन पुष्पमणि दादी को यही अंदर में एक ये था कि मैंने मम्मा को कोर्स कर, मुझे मम्मा की पोस्ट मिलनी चाहिए, तो बाबा ने मम्मा को क्यों दिया? और इसलिए अभी तक उसका मन मम्मा को मम्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए वो चाहती थी कि मम्मा अगर किसी और बहन को भेजे उसके बदले वो खुद क्यों नहीं आई। सूक्ष्म अभिमान देखो। बाबा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, और उसके बाद बाबा वापस ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आ गए, कुछ नहीं बोला बाबा ने उसके विषय में, और बाबा ने समाचार आदि सुनाया। समाचार सुनाने के बाद थोड़े दिन के बाद पुष्पमणि दादी ने बाबा से आकर कहा बाबा मैं घर जाना चाहती हूं, मैं यज्ञ में रहना नहीं चाहती हूं। बाबा क्या कहेगा? बाबा किसी को फोर्स तो नहीं करेगा, नहीं तुम रहो, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा जानता था कि यह अभिमान उसको खींच के ले जा रहा है, ये सूक्ष्म अभिमान के जो मम्मा को मम्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, इतना ऊंचा उसका पार्ट है, ऑलमाइटी बाबा प्रवेश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आज घर जाना चाहती है। बाबा ने तो ठीक है, क्योंकि उस समय बेगरी पार्ट भी था, है ना, तो लगा कईयों को, कई दादियां चली गई उस बीच में कि भाई अभी पता नहीं यज्ञ का क्या हाल होगा। तो उसने कहा मेरा भाई मुझे बुला रहा है, मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है जाओ। बाबा किसी को रोकता नहीं था, चली गई। फिर बाबा को पूछा गया कि बाबा उसका इतना ऊंचा पाठ था फिर भी वो चली कैसे गई, है ना? ऑलमाइटी बाबा उसके तन में आते थे तो ये कौन सा भाग्य था? चली गई ये तो समझ में आया कि अहंकार उसको लेके गया। सूक्ष्म अभिमान की गति बाबा ने बताई कि कैसे वो यज्ञ से उसको खींच के ले जाता है। लेकिन फिर जब प्रश्न पूछा कि बाबा उसका कौन सा ऐसा भाग्य था जिस कारण शिव बाबा ने उसके अंदर प्रवेश किया, तो उस समय बाबा ने रहस्य खोला। शिव बाबा ने रहस्य खोला। शिव बाबा ने कहा कि उसने पिछले जन्म में नौधा भक्ति किया था, पिछले जन्म में नौधा भक्ति किया था, और नौधा भक्ति करने के समय जब भगवान उसके सामने प्रसन्न हुआ था और उसको कहा था कि मांगो, जो वरदान चाहिए मिल जाएगा, तो उस समय उस आत्मा ने भगवान से यही कहा था कि हे प्रभु, मेरा शरीर, मेरा तन मन किस भी तरीके से आपकी सेवा में लगे, यही मेरी चाहना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये वरदान उसने मांगा था कि मेरा तन मन किसी भी तरह से आपकी सेवा में लगे या किसी काम आए, किसी न किसी काम आए, यही मैं चाहती हूँ, ये मेरी भावना है। तो ये वरदान उसको मिला था, इसीलिए उस वरदान के कारण भगवान ने उसका तन लिया, प्रैक्टिकल में यूज किया उसका तन, तन और मन दोनों को यूज किया। लेकिन यह अहंकार ऐसा कीड़ा था कि उस भाग्य को भी क्षीण कर दिया, और उस भाग्य को क्षीण करने के कारण बस जितना वो भाग्य था उसको बढ़ाना नहीं जाना उसने। निमित्त भाव से अगर बढ़ाना जानती थी तो बढ़ता था, लेकिन अहंकार आया तो जितना था उतना मिला और समाप्त हो गया और वो चली गई, है ना? आज इसीलिए प्रैक्टिकल में गुलजार दादी को देखते हैं तो कितनी निर्माणता है, कितना निमित्त भाव है, कभी भी मैं बाबा का रथ हूं ये भान कभी नहीं आता है। और इसीलिए बाबा ने हर एक को यज्ञ में, उन दादियों में हर एक दादी को कोई ना कोई विशेषता से ब्लेसिंग दिया था। बड़ी दादी का पार्ट अपना था, ब्रिजेंद्र दादी का पार्ट अपना था, पुष्पमणि दादी का पार्ट अपना था, मम्मा का पार्ट, ये सारी दादियां जैसे सेनानी के रूप में थी, है ना? लेकिन जो निमित्त भाव रखता है उसका भाग्य बढ़ता जाता है, और निमित्त भाव नहीं तो वो भाग्य क्षीण होता जाता है। और वही अंत समय में हमें दुनिया की ओर खींचने के लिए भी निमित्त बन सकता है, वो सारा भाग्य समाप्त कर वापस दुनिया में ले जाने के लिए भी निमित्त बन जाता है। इसीलिए बाबा सूक्ष्म ते सूक्ष्म अहंकार के ऊपर, देह अभिमान के ऊपर रोज जो रेगुलर साकार मुरली में भी ये बात आती है कि अपने आप को देखो, चेक करो कि कहीं सूक्ष्म देह अभिमान तो नहीं है। वो सूक्ष्म देह अभिमान भी कैसे अंतिम समय एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है, है ना? कि हमारे सारे भाग्य से वंचित कर देता है। ये प्रैक्टिकल उदाहरण था, है ना? तो इसीलिए बाबा ने अंतिम शब्द में ये बात कही, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी भव। वरदान भी दे दिया साथ में, और साथ में जो ये निमित्त भाव को रखते हुए चलेंगे वो इस अवस्था को बनाने के लिए जैसे प्लेटफॉर्म चाहिए, तो निमित्त भाव ही ये प्लेटफॉर्म है जो उस अवस्था को बनाने के लिए हमें तैयार करता है। इसीलिए बड़ी दादी जी को भी देखा निमित भाव, तो दादी जानकी जी को भी देखते हैं निमित भाव कि आज सारे विश्व में कितनी सेवा कर रही है निमित भाव के कारण। बाबा करा रहा है, वाह बाबा वाह, हुआ ही पड़ा है। दादी जी के स्लोगन याद करो, जानकी दादी जी के, हुआ ही पड़ा है, बाबा करा रहा है। तो ये जो सारा निमित भाव के जो बोल है, तो गुलजार दादी को देखो कभी ये भाव नहीं आएंगे, मैं बाबा का रथ हूँ, मैं हूँ, मैंपन का भान नहीं, चेहरे पर एक रेखा तक मैंपन की नहीं आती। इतना ऊंचा पाठ होने के बावजूद भी हर एक के साथ वही निर्माणता से बातचीत करना, तो आज अगर मुझे भी इस वरदान को, साकार बाबा के द्वारा दिए गए इस वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना है, तो अपने आप को हम देखें, अपने चार्ट में देखें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान को भी मैंने छोड़ा है या उसको निकाला है, या निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, क्योंकि उसकी पहचान निमित है, निर्माण है, उसकी पहचान क्या है? निर्मल वाणी। तो निर्मल वाणी कितनी है मेरी, सबके साथ का मेरा संबंध, व्यवहार, कर्म कैसा है? हाँ? तो धर्म और कर्म, ये दोनों बात जो है ये प्रैक्टिकल हमारे उस निराकारी अवस्था तक पहुंचाने के लिए बहुत पावरफुल सीढ़ी कहो, बहुत पावरफुल लिफ्ट कहो, जिसके माध्यम से ऊपर जाना आसान हो जाएगा। तो ये चेकिंग, हाँ, बहुत अच्छा चांस मिला है मधुबन की भट्टी का, और मधुबन में भट्टी करने के लिए साकार बाबा की कर्म भूमि यादगार भूमि है, बड़ों की यादगार भूमि है ये। तो इस भूमि पर हम अपना सेल्फ चेकिंग, सेल्फ रियलाइजेशन भी करते जाए, और सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए क्या करें, अपने आप को चेंज करना है, ठीक है ना? जो करेगा सो पाएगा। इधर उधर मुझे किधर भी नहीं देखना है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये नहीं देखना है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, है ना? वहां अपने आप को देखते हुए हम अपने आप को चेंज कर ले। ये बहुत सुंदर मौका दिया है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, है ना? ये भी इसी समय का वरदान कहो, बाबा ने ये मधुबन में भट्टी का चांस दिया है, तो इसीलिए आगे पता नहीं ये समय वापस मिले या न मिले, है ना? तो ये समय में जो मिला है उसका पूरा पूरा क्या करना है, लाभ भी लेना है, सदुपयोग करना है, और अपने आप की एकदम कंप्लीट चेंज पर्सनालिटी के रूप में यहाँ से हम वापस जाए, है ना? ठीक है, अच्छा ऑप्शन।
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यार।